ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयम् ददाति स्वपदांतिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। Very grateful, extremely grateful for allowing me to come and be amongst you. Our memories of being in Vrindavan and Barsana are very fond. And in 1986, Hindi mein bolna na sir? Hindi mein bolna, yes. Sorry. Rashtrabhasha ki jai ho. So, bahut saal pehle हम सब लोग 1986 में बरसाना गए थे और बस एक बुजवासी घर में ऐसे घुस गए थे 4 बजे। 40 लोग थे, 22 लोग ट्रेन से आए थे, बाकी के हवाई जहाज से। और हम लोग सब लोग बरसाने में मिले थे और दिन भर हमने कुछ खाया नहीं था। महाराज जी हमको घुमा रहे थे और शाम को 4 बजे घर में हम लोग प्रवेश किए। और उस समय पर उनका सब रसोई वगैरह समाप्त हो चुका था, शाम का बना नहीं था। और उन्होंने जिस गति से रोटियां बनाई, जिस गति से अचार निकाले बहुत सारे, और सब लोगों को गरम गरम 40 लोगों को भरपेट भोजन कराया 4 बजे। और उसके बाद में हम लोग वहां से एक कुंड है, गैबर कुंड, बहुत सुंदर विशाल कुंड है, उसके किनारे में परम पूज्य रमेश बाबा जी महाराज का कुटी हुआ करता था। वो रहते थे ऊपर लेकिन शाम को नीचे आते थे। और हमारे गुरुदेव राधानाथ महाराज जी ने कहा था कि इनको गाने को बताओ, आस्क हिम टू सिंग। तो मैंने जाके उनको कहा था कि महाराज जी कह रहे आप गाइए। तो फिर उन्होंने वहां पर दो क्या कहते हैं, हमारे संस्कृत में कहते हैं अजरामर, अजरामर मतलब उन गीतों को, देयर इज नो लाइफ, देयर इज नो एक्सपायरी डेट। वो जो गीत है दोनों दो गाए उन्होंने, इतना हम सबका ना हृदय ऐसा पूरा मंथन कर दिया, पूरा कंप्लीटली चर्न्ड आउट। और आई थिंक आपके छोटे बच्चे भी थे उसके अंदर और बाकी भी कुछ बच्चे थे। तो जिस प्रकार से बाबा जी महाराज गा रहे थे ना, वो बच्चे हंस भी रहे थे क्योंकि वो ऐसे इधर से लेके ऊपर तक अपना मुंह लेके जाते थे और आलाप लगाते थे, पूरे वो किसी और विश्व में थे। कृष्ण प्रिया स्वामा लाडली राधा और भजले राधे जय श्री राधे, उन्होंने गाया था। मैंने आज आपके लिए वो रिकॉर्डिंग लेके आया हूं मैं, और उसमें आपकी भी आवाज है, तो मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। तो ऐसा हमारा भाग्य था कि जब हमारा विवाह हुआ था तो हमने बहुत कोशिश की थी वृंदावन जाने की, लेकिन टिकट ही नहीं मिले। तो वो भगवान की बहुत अच्छी व्यवस्था थी वो, और महाराज जी ने फिर सबसे पहली वाली हमारी यात्रा जो है ना, हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर के इतिहास में सबसे पहली यात्रा जो है वो अरेंज की, जिसमें हम लोग गए और उसमें हमारा टिकट हो गया। तो सिन्हा जी प्रभु ने हमारे विवाह में उस समय हमको एक 2-in-1 प्रेजेंट दिया था। वो जमाना 2-in-1 का था, स्टीरियो फोनी 2-in-1, मोनो 2-in-1, मतलब एक ऊपर रेडियो और नीचे एक कैसेट और रिकॉर्डिंग का फैसिलिटी, दो बटन साथ में दबाने, तो उसका रिकॉर्डिंग होता है। यू नो प्ले प्ले एंड रिकॉर्डिंग प्लेस टुगेदर, देन यू स्टार्ट रिकॉर्डिंग। तो वो डब्बा लेके मैं बद्रीनाथ तक गया हूँ महाराज के पीछे, ऐसे रख के रिकॉर्डिंग करता था मैं। तो वही डब्बा मैं उधर लेके गया था और उसमें मैंने उसका रिकॉर्डिंग किया था। और फिर बहुत समय के बाद में अभी उसको डिजिटलाइज करके अभी सॉफ्ट कॉपी में मेरे मोबाइल में सब जगह पर है। तो ये हमारा बहुत सुंदर प्रिविलेज है क्योंकि हमारे जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर हम लोग बरसाना में वृंदावन में हमारा परिचय हुआ। और जो उस समय जो तार छिड़ा ना, वो अभी भी इट्स ट्रैंगिंग स्टिल, इट इज स्टिल वाइब्रेटिंग इन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी एंड इंक्रीजिंग ड्यूरेशन ऑल्सो। तो ऐसा हमारा परम भाग्य है कि संतों की कृपा से सब कुछ होता है। अगर राधानाथ महाराज नहीं होते तो हम ब्रज में नहीं जाते, अगर ब्रज में नहीं जाते तो संतों से वहां पर मुलाकात नहीं होती, उनके द्वारा जो थोड़ा बहुत रस का परिचय हुआ वो नहीं होता। और मैं तो कहूंगा कि सबके जीवन में बहुत संघर्ष है, तो कोई दो राय नहीं है। हर एक व्यक्ति के जीवन में अपने अपने स्तर पर बहुत संघर्ष चलते रहते हैं, कोई भी यहां पर छूटता नहीं है। लेकिन वो सारे संघर्ष में ब्रज का परिचय होना और ब्रज के लीलाओं का परिचय होना, ब्रज के पवित्र स्थानों का परिचय होना, ये तो परम परम भाग्य की बात है। पता नहीं हमने पिछले जन्म में कितने पुण्य किए, पता नहीं क्या किया है उसके वजह से ये सब प्राप्त हुआ है, और ये हमारा परम परम सौभाग्य है। और धीरे धीरे भी पता चला कि एक बार जिनके साथ बैठकर वो हमारे हृदय के अंदर की तार छेड़ सकते हैं, इतनी उनके अंदर पवित्रता है, इनके अंदर इतनी स्पिरिचुअल पावर है कि वो नए आए हुए लोगों के हृदय में इतना परिवर्तन ला सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों से हमारी वहां पर परिचय हुआ। और हमारे जाने के पहले कम से कम ऑलरेडी 40 साल वो वहां पर थे, रमेश बाबा जी महाराज, और उन्होंने कितने संघर्ष किए वहां पर, घैबर बंद को वन विभाग में संरक्षित करने के लिए, पहाड़ों की रक्षा के लिए इतने संघर्ष किए हैं, साथ साथ सबको ब्रज रस का पान कराते उन्होंने ब्रज की रक्षा के लिए बहुत संघर्ष किए। तो थोड़ा सा हम अभी वृंदावन बरसाने का गौरव थोड़ा सा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारी भलाई उसी में है कि हम ब्रज के विषय में चर्चा करते रहे, ब्रज के विषय में विचार करते रहे, चिंतन करते रहे, यही हमारा जीवन का परम सौभाग्य है। बाकी बेस लेवल पे तो स्ट्रगल सबकी चलती रहती है, नथिंग न्यू, ऑल पीपल आर एवरीबॉडी स्ट्रगलिंग एंड हैविंग देयर ओन बैटल्स रनिंग। बट अगर हमारे जीवन में ब्रज का चिंतन है तो वो चिंतन हमें सभी प्रकार के चिंताओं से और पीड़ाओं से परे कर सकता है। तो पूरे विश्व में, पूरे निर्माण में, क्रिएशन में सब लोग भगवान के चरणों के रज चाहते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि भगवान के चरणों के रज है ना, वो कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। सब जगह भगवान होते हैं लेकिन रज अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि भगवान नंगे पैर कहीं जाते नहीं है, ना द्वारका में जाते हैं नंगे पैर, तो पूरा हीरे से भरा हुआ चप्पल पहनते हैं और ऐसे मखमल रहता है उसके ऊपर, तो जमीन को पैर लगेगा कैसे? रज कब बनती है? जब तलुए मट्टी में स्पर्श करेंगे तो रज बनेगी ना। तो इधर तो मखमल है सब जगह पर, या तो दारू के द्वारा चलाया हुआ रथ है, और नहीं तो पैर में हीरे मोतियों के चप्पल है, तो कोई चांस नहीं है। जगन्नाथपुरी में, श्रीरंगम में, नीचे पश्चिमी द्वारका में, कहीं भी चांस नहीं है। लेकिन ब्रज में वो बिना जूता पहन के आते, सब कुछ छोड़ के आते, नो पोजिशन ऑफ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉट इट। तो इसलिए सब उनकी चरणों की रज देने के लिए वृंदावन में आते, सारे ऋषि मुनि देवता जितने तपस्वी ध्यानी जितने भी लोग हैं वो वृंदावन में आते। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जिनके चरणों की रज प्राप्त करने के लिए सारे देवी देवता ध्यानी तपी ऋषि मुनि जन्म जन्मान तक तप करके वहां पहुंचते हैं रज प्राप्त करने के लिए, वो भी कहीं जाते हैं अपनी अपने कल्याण के लिए, मतलब वो समझते हैं ऐसा, अपने कल्याण के लिए, अपने उद्धार के लिए, अपने अपलिफ्टमेंट के लिए वो जाते हैं बरसाने। और वो कृष्ण जिनके चरणों के रज सब लालायित है उनके लिए, वो जाकर वहां पर लोटपोट हो जाते हैं। लोटपोट मीन्स रोलिंग इन द डस्ट ऑफ बरसाना, क्योंकि वहां राधा रानी विहार करती है और वो भी वहां पर बिना पादत्राण के विहार करती है। तो क्या क्या करते कृष्ण वहां पर? देखो, एक तो राधा रानी नहीं भी होगी तो भी उस रज में लोटपोट हो जाती जैसे ही बरसाना पहुंचते। फिर जब राधा रानी मिलती है तो कभी भी रूठ जाती है, तो फिर वो अपना मोर मुकुट उनके चरणों में अर्पण करते, सरेंडर टोटली, फिर भी वो नहीं मानती। फिर वो क्या करते हैं, वो मोर मुकुट बिना जो शीश है वो उनके चरणों पे लगाते। यू कैन इमेजिन द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड इज ऑफरिंग हिज हेड एट द लोटस फीट ऑफ राधा रानी, और फिर भी वो नहीं मानती। फिर वो क्या करते हैं, फिर वो रोते हैं, हृदय से रोते हैं, और वो अपने अश्रुओं से राधा रानी के दो दिव्य चरण कमलों का अभिषेक करते हैं। फिर भी नहीं मानती है, फिर वो जो अश्रुओं से भीगी हुई जमीन है और रज है गीली, उसमें लोटपोट हो जाते हैं और फिर भी नहीं मानती। और ये हमारे जयदेव गोस्वामी हैं, वो उन्होंने ये प्रसंग लिखा है गीत गोविंद में। और हमारे आचार्य ऐसे हैं कि वो कोई कपोल कल्पना करते नहीं थे, उनको जो दृष्टांत होता था ना, जो दिखाई पड़ता था, वो उसको उतारते थे। वो तो दृष्टांत में देख रहे हैं कि राधा रानी को कृष्ण भगवान मना रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 सारे स्टेप्स ले रहे हैं, तो उनको ना वो लिखा नहीं गया। He couldn't just write. He felt कि this is too impossible. How it is possible? तो उनका शीश बहुत गर्म हो गया, तो फिर वो गंगा किनारे स्नान करने के लिए गए। पत्नी को बोला कि I'll take a break. It's too heavy for me to accept. और बीच में कृष्ण स्वयं आए जयदेव जी का रूप लेकर, और उन्होंने वो पंक्तियां पूरी की अपने मोती जैसे अलग अक्षरों में, इनसे अलग अक्षरों में वो पंक्तियां पूरी की। यस, मैं ये सब करता हूं, ऐसा पूरा वर्णन पूरा किया और चले गए। और बीच में पद्मावती की उनकी पत्नी के हाथ से भोजन किया उन्होंने और चले गए। और कुछ ही मिनट बाद मूल जयदेव जी आ गए वहां पर और कहते पत्नी से, मुझे भोजन कराओ। तो कहते अभी भी तो आए थे। तो सब समझ में आया कि अंदर भाग के गए, आप अंदर भी गए थे, तो अंदर गए तो वो पंक्तियां उन्होंने पूरी कर दी थी। तो जो जयदेव जी को लिखने में संकोच था, वो कृष्ण को लिखने में बिल्कुल संकोच नहीं है। उन्होंने आके उधर एकदम दिल से लिख दिया कि मैं क्या हूं, उसमें मुझे कोई संकोच नहीं है। ऐसी भूमि बरसाना जहां पर साक्षात परब्रह्म एक निम्न व्यक्ति बनकर आते हैं। और कैसे रहते हैं, सखी बनकर रहते हैं वहां पर। आप बरसाना में कभी जाएंगे ना, तो आप ठीक से दर्शन करेंगे ना, तो राधा रानी के ऊपर एक चुनरी ओढ़ी रहती है, और आप ठीक से देखेंगे तो दोनों के ऊपर एक बड़ी चुनरी होती है जो कृष्ण के लिए होती है, उसमें राधा रानी समाहित होती है। क्योंकि राधा रानी ने अपने पिताजी से कहा था कि मेरा इनसे विवाह होने के बाद में इनको घर जवाई बना लू। इसलिए वो वही रहते हैं, लेकिन वहां रहते सखी भाव में रहते हैं। सखी भाव का मतलब इट इज नॉट फिजिकल दैट वी हैव टू बिकम अ वुमन। सखी भाव का अर्थ होता है कि सेवा भाव, निम्न भाव, नम्र भाव। और बरसाने में अगर उसका रहस्य किसी को पता करना है तो ये सखी भाव को हमें अपनाना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बरसाना और उसके आसपास का क्षेत्र नंदगांव, जावट, कोकिलावन, ये एक विशेष एरिया है। जैसे जैसे हमारा घर है, उसमें एक हॉल होता है, उसमें सब लोग आ सकते हैं, लेकिन अंतःपुर में सब लोग नहीं आ सकते, वो प्राइवेट एरिया है, उसमें केवल घर के जो एकदम निकटवर्ती हैं वो भी घर में प्रवेश कर सकते हैं। वैसे बरसाना, नंदगांव, जावट, कोकिलावन, ये ब्रज धाम का अंतःपुर है, और वहां पर राधा और कृष्ण बहुत ही अंतरंग प्रेम पूर्ण लीला करते हैं, जिसका जिसमें कोई व्यवधान नहीं आ सकता है। बाकी ब्रज में कैसा होता है, गोचारण करने के लिए गए तो केशी राक्षस आया, हरिष्टासुर आया, बीच में मुठभेड़ हो गई, मारामारी हो गई, मारधाड़ हो गई, बंद कर दिया, ये बीच में वहां होता है। लेकिन बरसाने में नहीं हो सकता है, क्योंकि वहां पर ऐसी उत्कट लीला चलती है कि उसमें कोई व्यवधान आ ही नहीं सकता है। तो राक्षस सब लोग पीछे लगे थे, तो राक्षसों को बरसाना एरिया में कैसे नहीं लाया जाए, तो ये राधा रानी कर सकती। तो क्या लीला हुई, जब ही वो लोग गोकुल से नंदगांव में शिफ्ट हो गए, तो उस समय कंस को परेशानी हो गई कि कहाँ गए, अभी तो हॉप्स स्किप एंड जंप में थे सब लोग थे ना, जब जमुना पार करते ही गोकुल, उधर में सब कृष्ण बलराम सब रहा करते थे। अचानक एक दिन चले गए, वो एक मीटिंग किया, डिस्कस किया, चले गए सुरक्षा के लिए, कृष्ण बलराम के लिए। तो कंस है ना, अपने काले घोड़े पर बैठकर ढूंढे 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 आया, क्योंकि जितने भी गए ना सब वन वे टिकट थे, वापस कोई आए नहीं, जिनको जिनको भेजा सब लोग उधर ही समाप्त हो गए। तो कंस अपने काले घोड़े पर बैठकर बरसाने में आया, उधर एक जगह है भानु खर, जो ब्रजभानु महाराज का बड़ा पॉन्ड है, प्राइवेट पॉन्ड। वहां राधा रानी उस समय अपने सखियों के साथ में स्नान कर रही थी। तो ये आता है, और आते ही वहां पर इसका शरीर स्त्री का हो जाता है, ही गेट्स कन्वर्टेड टू वुमन। जो मैं कथा कर रहा हूं, अचानक मैं श्री बन गया सपोज आई विल कम टू नो ना कि समथिंग इज गॉन रॉन्ग एवरीबॉडी इज वाचिंग मी सम चेंज इज अकर्ड हियर तो कंस को पता चला उसका घोड़ा भी घोड़ी बन गया और सब सखियों को तुरंत पता चला कि हमारे ये माननीय सम्माननीय कंस महाराज जो है वो गोपी बन गए हैं तो उन्होंने कहा उनको मोटल्ली गोपी नाम दिया मोटल्ली गोपी मतलब थोड़ी सी मोटी और वो रोने लगे सब गोपियां हाथ ताली बजाकर ताली पीटकर हंसने लगे अब देखिए इतना चक्रवर्ती सम्राट दिग्विजय कंस उसका तो गर्ग संहिता में बड़े अध्याय दिए पराक्रम के वो सबसे टैक्स लेता था वो नंद महाराज से वसुदेव से एवरीबडी उसको पे टैक्स टू हिम एवरी ईयरली तो सबका सम्माननीय व्यक्ति वो बरसाने में भी फेमस है और सबके सामने कन्या हो गया सब गोपियों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया तो कंस को कैसा है वापस जाएंगे तो भी संकोच है वहां पर भी संकोच है वापस जाएंगे तो मंत्रीगण क्या कहेंगे और यहां रहेंगे तो गोपी हंस रही है लेकिन देयर इज नो चॉइस। 6 महीने तक कंस महाराज को यानी अभी कंस ने गोपी को कंडेले पुआई उन्होंने उनके हाथ से कंडेले में मतलब क्या होता है गौशाला साफ करो पहले गोबर इकट्ठा करो फिर वो सर पे धारण करो फिर ब्रज ब्रज को उसको मिलाओ फिर उसको अच्छी तरह से आपने बताया ना अच्छी तरह से बताओ बोल और उसको पेड़ पे टिकड़ी पे किधर टील पे सब जगह सुखाओ रुको वहां पर शाम तक उसको इकट्ठा करो टोकरी में जमा करो फिर एक स्पेशल कमरा होता है उसका गोबर से बनाया हुआ उसमें उसको सेट करो। आंखों में आंसू लेते हुए 6 महीने तक गोपियों ने कंस की गोपी से कंडे लिखवाए और वो हर दिन रोता रहा। 6 महीने के बाद में ब्रिजभानु महाराज एक बार राधा रानी के साथ में आए तो कंस इनके चरणों में गिर गया बोले महारानी मुक्त करो। तो पिताजी ने कहा देखो हमारे महाराज है वो हम उनको टैक्स देते हैं हर साल और सब लोग डरते भी थे उनसे क्योंकि बहुत भयंकर थे वो अभी इतना रो रहे हैं और आपके चरणों में गिर रहे हैं माफ करो ठीक कोई बात नहीं 6 महीने हो गए अभी वो तो क्या। तो राधा रानी ने क्या किया उंगली उठाई दोबारा यहां पर आओगे तो परमानेंट कन्या बना देंगे। देखो कितनी महाप्रतापी है हमारे राधा रानी है ना कृष्ण से वो आक्रमण करके मारने के लिए आते थे लेकिन राधा रानी के सामने कभी भी नहीं आए दोबारा कभी भी नहीं आए। तो फिर उन्होंने कहा तो बोले वादा करता हूं मैं कभी नहीं आऊंगा ना मेरा कोई आदमी आएगा ना मैं आऊंगा इधर कोई नहीं आएगा मतलब एरिया पूरी कैसे होगी कॉर्डन एरिया होगी ना नोबडी विल कम इनसाइड द एरिया एवर टू डिस्टर्ब। मैंने कहा कि मेरा किशोरी कुंड है वो जावट में है थोड़ा दूर है किशोरी कुंड है यहाँ पर छलांग लगा दो फिर आपको पूरी शरीर प्राप्त हो जाएगा। तो उसने अपना घोड़ी अभी जो घोड़ी बनी हुई है उसको लेकर छलांग लगाई और तत्काल उसको पूरी शरीर प्राप्त हो गया और वो जो भागा वहां से सीधे मथुरा तक पीछे मुड़के भी देखा नहीं क्यों अगर पीछे मुड़के देखा और महारानी का माइंड चेंज हो गया तो नोबडी नोस सो ही वांटेड टू रन। उसके बाद वो कभी भी बरसाने लौट के लिए आया। ये कथा कहां बताई गई जब भगवान ने गोवर्धन को उठाया ना तो गोवर्धन को उठाने के बाद में विस्मय कथा हुई उस विस्मय कथा में ब्रजवासियों की सभा में ये सब डिस्कस किया गया कि नंद का लाला कौन है ऋषि है मुनि है सिद्ध महात्मा है कौन है इतने बड़े राक्षसों को मारता है 12 मील पुतना को मारा अभी इतने बड़े गोवर्धन को 7 दिन 7 रात तक उठाए रखा नंद कौन है तुम्हारा बालक है। तो जितना जितना गौरव किया गया उतना नंद बाबा ने काट दिया उसको सिद्ध महात्मा है अभी तो आकाश के गड़गड़ाहट सुनकर डरता है वो गोद में भागता है और दूध पीता है माता और ऋषि मुनि की बात कर रहे हो बिल्कुल इंद्रियों में नियंत्रण नहीं है जरा कुछ मक्खन नहीं मिला तो जाकर बच्चों को चिमटा निकालता है उनके क्रेडल में पानी डालता है कान में उनके हाउ मच डिस्टर्ब्स और भी कुछ नहीं मिला तो फिर मूत्र विसर्जन करके चला जाता है ये कोई सिद्ध महात्मा के लक्षण है ऋषि मुनि के लक्षण ऐसे करके नंद बाबा सब काटते गए और फिर बद में सब सिर पर बैठे हुए थे वो पेट पकड़कर हंसते हंसते जमीन पर लोटपोट हो गए जितना गौरव किया गया उतना वो काट दिया गया उसमें मजा ही मजा आया उनको और हंसते लुटते रहे। तो उस स्थान पर ये कथा बताई गई क्यों क्योंकि बीच में उन्होंने कहा कि हाँ गर्ग मुनि ने तो कहा था कि ये गिरिराज को एक दिन धारण करेगा। क्या गर्ग मुनि कब आए थे क्योंकि गर्ग मुनि के द्वारा नामकरण किया गया था वो सीक्रेट रखा गया था कंस के भय से और अचानक खुशी खुशी में नंद बाबा ने वो भांडा फोड़ दिया सीक्रेट खोल दिया तो फिर विद्वासी एकदम गर्म हो गए उसमें हॉट दे बिकेम वेरी एंग्री कि आपने हमको नामकरण में नहीं बुलाया, सीक्रेट रखा कि वो कभी आए कभी गए पता नहीं चला। तो फिर विश्वान बाबा बोले कि देखो भाई सिचुएशन कैसी थी उनकी, आप समझो जरा, कंस का इतना भय था, नन्हे बालकों के लिए इतनी भयंकर राक्षसी भेजी थी मारने के लिए, शक्तासुर को भेजा था, तृणावर्त को भेजा था, आप समझो जरा। बोले आप उनका पक्ष लेते हो, इनको भी बरी कर दो, इनके साथ रष्टिकेट, हमारे ब्रजवासी बिरादरी से इनको रष्टिकेट कर दो। तो जब ये बात इतनी पहुंच गई, नंद बाबा को रष्टिकेट करो, विश्वानु बाबा की रष्टिकेट करो, तो तीसरा एक ग्रुप खड़ा हो गया। उन्होंने कहा नहीं नहीं विश्वानु बाबा को रष्टिकेट करने की बात मत करो, इनके कन्या के महाप्रताप से यहाँ पर कोई राक्षस नहीं आ रहा है। तो यू नो अबाउट इट, तो उन्होंने वो कहानी बताई जो मैंने आपको भी बताई कि इनकी कन्या राजा रानी जो है इनके महाप्रताप से इस बरसाने में कोई राक्षस आने की हिम्मत नहीं करता है। क्योंकि वहां पर कैसे लीला होती है, मैं आपको एक छोटी सी लीला बताऊंगा। एक बार कृष्ण भगवान ने ये बताने के लिए बता रहा हूं कि किस प्रकार की लीला वहां होती है जिसमें राक्षसों का व्यवधान हो ही नहीं सकता, इट्स नॉट पॉसिबल टू बी इंटरप्टेड विद सच काइंड ऑफ थिंग्स। तो कृष्ण भगवान जानते हैं ना आप सबकी हमेशा चोरी करते रहते हैं, मक्खन चुराते हैं, वस्त्र चुराते हैं, राधा रानी बात करती है तो यहाँ का मणि गायब हो जाता है, इधर का मणि गायब हो जाता है, कान का कुंडल गायब हो जाता है, ऐसे घर पे जाके पता चलता है कि अरे एक कान में कुंडल है दूसरे कान में नहीं है। फिर वो कृष्ण के जेब में मिलता है, फिर वो कहते हैं कि जब मैं आपको मिलता हूँ ना पता नहीं मेरी इंद्रिया मेरे हाथ पैर ऐसे घूमते हैं कि मेरे वश के बाहर होते हैं, मैं क्या निकालता हूँ क्या करता हूँ मुझे समझ नहीं आता, आई एम वेरी सॉरी टेक इट बैक। तो इससे ना बहुत गोपियां परेशान हो गई थी, दंगा गई थी, इनको भी एक बार सबक सिखाना चाहिए। एक बार उन्होंने क्या किया, उनको ना बहुत सारा भोजन खिलाया प्रेम से, कोई वाद विवाद नहीं, कोई बहस नहीं। आमतौर में कैसे होता है ना, मक्खन चाहिए तो बहस होती है, मटका फोड़ना होता है, फिर परेशानी होती है। उसने कहा कि कोई परेशानी आपके लिए हमने बहुत सारे व्यंजन बना के लाए हैं, पेट भर के खा लो सब गोपियों, बोल ग्वाल बालों को बिठाया, उनको अच्छा भोजन कराया फर्स्ट क्लास, और इतना भोजन कराया, इतना परोसा कि वो पहले बैठ के खाया उन्होंने, फिर ऐसे होके खाया, फिर लेट के खाया, इतना हेवी हो गए कि बाद में वहां उधर भी खिलाया और पहले सुला दिया पूरा, और सारे ग्वाल बाल सो गए, इतना खिलाया, आठ घंटा भोजन कराया। और फिर उन्होंने जाके चेक किया कि वास्तव में सब लोग सो रहे हैं, फिर राधा रानी और गोपियों ने मिलकर कृष्ण के सारे अलंकार उतार दिए, सारे यहां से लेकर वो सोने की श्रृंखला होती है, श्रृंखला के अंदर मोर पंख लगा होता है, वहां से लेकर पूरा कंठाहार, बाजूबंद, कलाईबंद, कमरपट्टा, हार, जितने भी अंगूठियां जो भी है सारा उतार दिया, मुरली भी उतार दी, कमर पट्टा उतार दिया, सब कुछ पैंजन निकाल दिया, सब कुछ निकाल दिया। बहुत देर बाद कृष्ण उठे, देखा तो क्या यशोदा माता ने पहनाए हुए एक मिश्रित घर शरीर पर नहीं है, अभी माँ को क्या बताएंगे। ठीक है चलो कुछ करते हैं, माँ को फिर घर पे गए तो पूछा अरे श्रृंगार किधर है सब कुछ। बोले भैया बताता हूँ, आज ऐसा प्रसंग हुआ है ना कि मुझे बताने में बहुत शर्म आ रही है, लेकिन सारे के जेवर आ जाएंगे, आप चिंता मत करना, मैं जरूर लाऊंगा उसको। बस हो गए। तो नेक्स्ट डे सुबह जब भी श्रृंगार वगैरह किया उनका, एज इफ ही इज गोइंग फॉर हर्डिंग काउस, तो वो अचानक एक सुंदर कन्या आ गई वहां पर, जो इतना बड़ा घूंघट ओढ़ी हुई थी, हाँ आकर मैया के पैर छुए। तो उनको अरे कौन हो आप, देखा नहीं कहीं नई ब्याही हुई क्या, कहीं नई विवाह करके आ गई हो। तो वो ऐसे कन्या जो है ना वो घूंघट उठा दिए, तो कौन थे वो, श्री कृष्ण भगवान थे। उस दिन सखी बनकर पूरा लंबा घूंघट ओढ़कर बोले ये क्या है आज, बोले भैया आपको बताता हूँ सब समझ में आएगा, थोड़ा टाइम रखो, थोड़ा धीरज रखो, मैं सब समझाऊंगा। और वैसे वो बरसाने गए, और बरसाने गए तो जैसे एंट्री किया ना, अभी कुछ औरतें वहां पर कपड़े धो रही है, कुछ गाय को सेवा कर रही है, कुछ दूध निकाल रही है, ऐसे अपना अपना काम कर रही है। उतने में आती है कृष्णा ऐसे करके पुकारती है और बेहोश भी गिर जाती है। सब लोग एकदम चौकन्ने हो जाते हैं, अरे सच सच लव, इतना सारा प्रेम हम में से किसमें नहीं है। तो सब इकट्ठा हो जाती है, अरे कौन हो तुम, कहाँ से आए हो। तो बोलते मैं नंदगांव से आई हूँ, नंदगांव में तो कभी देखा नहीं आपको, नहीं मैं नई नई ब्याही ब्याह कर आई हूँ। और कहाँ आ रही हो, मुझे राजा रानी से मिलना है। तो उसका भाव देखकर सब गोपियां बहुत सिंपल हार्टेड, दे आर नॉट एनवियस ऑफ एनीबॉडी, सो दिस इज समबडी हु इज मोर लव्ड देन दे हैव, दे आर वेरी इंप्रेस्ड। तो इकट्ठा हो जाती है, फिर वो और इकट्ठा हो जाते हैं, तो ये श्याम सुंदर ऐसा बेहोश हो जाते। ऐसे जितनी बार गिरते हैं उतनी बार उनको जगाते हैं उतनी बार और सखियां एकत्र हो जाती है। ऐसे भाव का प्रदर्शन करते 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 इनको सब लोग कहते हैं कि राजा रानी को मिलाना चाहिए इनको, सब ले जाती हैं और पहाड़ पर चढ़ा के उनके गेट पर उनको ले जाते हैं और फाइनली राधा रानी को जाके बताते हैं ऐसी गोपी आई है बरसाने में कि क्या कहें हम लोगों को कोई प्रेम ही नहीं आपके प्रति, कृष्ण के प्रति जितना इसको प्रेम है। आपका नाम लेते ही आधा नाम उच्चारण करने के पहले ही कृष्ण भगवान का नाम लेते ही बेहोश हो जाते हैं। राधा रानी को भी बहुत कुतूहल है कि जो भी व्यक्ति कृष्ण पर प्रेम करता है उस पर राधा रानी प्रेम करती है, शी इज वेरी अट्रैक्टेड टू दिस गर्ल। तो फाइनली राधा रानी सामने आती है दर्शन करने के लिए, तो ये एक बार जोरदार पुकारते हैं राधे श्याम, बेहोश है। हर बार कुछ कुछ प्रयास से वो जग जाती थी, इस बार सब कुछ करने पर भी वो नहीं जग रही है, यहां तक कि सांस भी बंद हो चुकी है। सब लोग क्या करते हैं ना, रुई लेते, रुई कॉटन लेते हैं, उसको रोल करते हैं और वो नाक पर लगाते हैं कि हवा आ रही कि नहीं आ रही, तो थोड़ी सी हवा आ रही है, थोड़ी सी, मतलब लाइफ इज देयर बट ऑलमोस्ट नॉट देयर। वो दुखी हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, क्या करें क्या करें, व्हाट टू डू। तो अभी से गंभीर मामला है, कुछ सखियां हवा दे रही है, जल दे रही है, कुछ मंत्र उच्चारण कर रही है, नरसिंह मंत्र उच्चारण कर रही है, लेकिन कोई उठने का नाम नहीं है। तो ललिता विशाखा मीटिंग करते हैं और सोचते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कुछ करना चाहिए, दिस वेरी सीरियस मैटर। तब ललिता के मन में थोड़ा आइडिया आती, अरे कल ही तो हमने सब गहने चुराए थे ना सारे कृष्ण के, नखशिखांत मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक। तभी श्याम सुंदर के इतने विरह में है, तो हम लोग राधा रानी को श्याम सुंदर का पूरा वस्त्र जो भी कुछ छिना हुआ सब पहना देते हैं, श्रृंगार करते हैं और सारा कृष्ण का मुगली वुगली दे देते हैं, फिर थोड़ा सा विरह शांत हो जाए। तो फिर कुछ सखियां हवा दे रही है, कुछ सखियां तुरंत राधा रानी के कक्ष में जाकर उनको श्रृंगार कर लेकर आती है और वो खड़े जाते हैं, कान में जाकर बोलते हैं सखी श्यामा सखी उठो देखो श्याम सुंदर जी आए हैं। तो वो जो जंप मार के उठते हैं ना, पूरा पल्लू उल्लू फेंक देते हैं, बोलते देखो रंगे हाथ पकड़ा ना आपको अब अपने आप को बहुत होशियार समझते हो, हाँ मुझे सुलाया खिलाया पिलाया सुलाया सब चोरी कर लिया, देखो सब निकालो उतारो सब उतारो, ऐसे खड़े हो जाते हैं और चुपचाप सब सखी ऐसे सर झुका के एक एक उतार खिला देते हैं और इनके सखा लोग उनको अच्छे तरह से पहनाते हैं। तब तक तो सब मंडली आ जाती है ना, उनको मालूम है प्लान क्या था आज का। फाइनल सीन के बाद सब लोग सखा लोग आ जाते हैं, सखी आज सर झुका कर दे रही हैं, वो उनको पहना रहे हैं और फाइनली मुरली देते हैं, फिर वैसे खड़े होते हैं बजाते हैं, अब मैं जाता हूं दोबारा ऐसे गुस्सा के मत करना अभी ऐसी लीला होती तो को राक्षस आएगा चलेगा क्या, अचानक वो श्याम सुंदर करके गिर रहा है और अरिष्टा सुर हाउ इट इज पॉसिबल। ऐसे ही अनेक चटपटी लीलाएं बरसाना होगी, उसमें से एक विशेष चीज है छद्म लीला। छद्म लीला यानी भेष बदल कर आना, क्योंकि कृष्ण को ना अधिकतर अधिक समय नंदगांव में रहना मुश्किल है उनके लिए, नॉट पॉसिबल टू स्टे फॉर लॉन्ग विदाउट राधा रानी। तो वो हमेशा कभी वो चूड़ी बेचने वाले बनकर आते हैं, कभी ब्रह्मचारी बनकर आते हैं, कभी सन्यासी बनकर आते हैं, कभी फूल बेचने वाले बनकर आते हैं, कभी कोई बनी मालिन कोई बनी झाड़िन, कभी झाड़ू लगाने वाले बनकर आते हैं, कभी कंगन बेचने वाले बनकर आते हैं। तो ये सभी रूप बदल कर आते हैं और वहां पर लीला करते हैं। एक बार ब्रह्मचारी बनकर आए थे और वो हाथ दिखाने वाले एक्सपर्ट, ऐसे उनका ख्याति था, तो सब सखियां वहां पर गई अपना अपना हाथ दिखाने के लिए। देखो यहाँ इधर भी कोई होगा ना हाथ दिखाने वाला, तो ये सब क्लास छोड़ के सब लोग उधर जमा हो जाएंगे, हमारा भी हाथ देखो हमारा भी हाथ देखो अरे कथा सुनो बाद में, नहीं नहीं अभी देखो अभी देखो, बाद में सब लोग आएंगे तो फिर कैसे चलेगा। इतना लोगों को अट्रैक्शन होता है कि मेरे हाथ में क्या लिखा है बताओ महाराज जी बताओ, तो सबका हाथ देखा उन्होंने और कहा कि तो कुछ कुछ बताने लगे, कुछ कुछ सही बताने लगे, कुछ कुछ गलत बता रहे हैं। फिर वो उन्होंने कहा कि देखो आप अगर हमको बताएंगे ना कि हमारे मन में कौन है, हम इस पर प्रेम करते हैं, तो फिर हम मान जाएंगे आपको कि आप सच्चे विद्वान हो। उन्होंने कहा देखो मैं तो जब से आप आई हो तब से जानता हूं आप किसके बारे में सोच रही हैं, लेकिन अगर बताऊंगा तो आपको आपको ही संकोच होगा आपको ही आपके लिए वो गुप्त बात है, लेकिन मैं बताऊंगा तो सबके ओके ठीक है ठीक है। फिर एक काम करना, अगर आप सच्चे भविष्यवेत्ता हो तो फिर आप जो हमारे मन में है उसको यहाँ प्रकट करा दो एकांत में। मैंने कहा ठीक है सब लोग आंख बंद करो, तो लोग आंख बंद करो उसका ध्यान करो जिसका आप चिंतन कर रहे हो, जिसका जिसको चाहते हो। तो सब लोगों ने एकदम बराबर 100% आंख बंद कर लिया, उसने सारा उस बहिष्कार उतार दिया, फेंक दिया उसको और आ गए कृष्ण की तरह। बोले अरे गोपियां आप लोग आंख बंद करके क्यों बैठी हो सब लोग? बोले एक बाबा आए थे बहुत बड़े सिद्ध बाबा थे, वो उन्होंने कहा था कि अगर आपके मन में जो व्यक्ति है उसको मैं यहाँ प्रकट करके दिखाऊंगा। हमने भी उनको चैलेंज दिया था, पता नहीं कहाँ चले गए वो, अभी भी यहाँ पर थे, बहुत ढूंढते ही थे मिलता नहीं है उनको। ऐसे ही एक बार कृष्ण भगवान वहां गोप देवी बनकर आए थे, गोप देवी ऐसे ही श्यामा सखी बनकर घूंघट ओढ़कर आए थे नई नई दुल्हन बनकर। राधारानी का कक्ष में गए और राधारानी ना उनका देखकर बहुत मोहित हो गए थे, क्योंकि कृष्ण थे ना वो, और ऐसा भाव आ रहा था उनका कि मतलब ये रिकॉग्नाइजिंग हिम वो कृष्ण है, लेकिन उनकी उपस्थिति तो है ना, ही इज प्रेजेंट देयर, तो ऐसा दिल धड़क रहा था उनका। तो वो कहते हैं कि वो जो मैं आ रही थी ना तो मुझे काला कलर का लड़का मिला, लोगों ने कहा कि इसका नाम श्याम सुंदर है, उसने मुझे बहुत छिड़ा रास्ते में, मेरा पल्लू खींचा, जब मुझे घूंघट रखना था तो वो घूंघट खींच रहा है, मेरा हाथ खींच रहा है और बहुत शरारती की मुझसे, आप है ना कभी भी उससे पेश मत आना, वो बहुत ही क्या कहते हैं अनकल्चर्ड बॉय है, कोई मर्यादा का पता नहीं है, कुछ संस्कार नहीं है उसके ऊपर, कोई अच्छे गुण नहीं उसके अंदर, हमेशा गैयाओं के बीच में गोबर में गोमूत्र में घूमते रहता है और कोई शिष्टाचार नहीं उसके अंदर। तो राधा रानी को ना एक एक बात सहन नहीं हुई उसकी कि ये कोई शूरवीरता नहीं उसके अंदर, कोई संस्कार नहीं उसके अंदर, कोई साधना नहीं करता है, कोई बदतमीजी करता है। तो राधा रानी ने एक एक करके, मेरी लंबी कहानी है, एक एक करके सब डिफीट कर दिया। अरे आपने तो साधना नहीं उसके पास, दिन रात वो गैयाओं के बीच में रहकर गैयाओं का नाम लेते हैं, गैयाओं का नाम लेना सबसे बड़ी साधना है, और गैयाओं के चरणों से जो धूल उड़ती है वो धूल में हमेशा वो स्नान करते रहते हैं, तो इनके बड़ा पवित्र और कौन हो सकता है। और आप वीरता की बात कर रहे हो, उन्होंने शक्टासुर को मारा, इतने बच्चे होते हुए पुतना को मारा, रणावर्त को मारा, और आप शूरवीरता की बात कर रहे हो। इस तरह से जो जो लांछन लगाया वो राजा रानी ने सब कुछ काट दिया। तो ये इनका प्रेम देखकर अभी कृष्ण को रहाने जा रहा है टू मेंटेन हिज छद्म, उनको वो छद्म मेंटेन नहीं हो रहा है, तो बहुत वैसे व्याकुल हो जाते हैं, ही इज अनेबल टू मेंटेन हिज नो व्हाट यू कॉल ड्रामा। तो कहते हैं अगर तुम्हारा उस व्यक्ति पर बहुत सच्चा प्रेम है और आप लोगों का संबंध बहुत पवित्र है तो मैं देखना चाहती हूं कि वो अभी के अभी यहां प्रकट हो जाए। तो राधा रानी तुरंत अपना आंख बंद कर लेती है और उनका ध्यान करने लगती है, तुरंत जाते हैं गोप देवी का वेश उतारते हैं और तुरंत मुरली बजाते हैं, वहां पे आ जाते हैं और कहते हैं, तो राधा रानी को पुकारते हैं तो वो आंखें खोलती है। तो कृष्ण क्या कहते हैं, जब मैं यहां पर आ रहा था ना तो एक बहुत दुष्ट औरत मुझे मिली, वो बहुत निंदा करती है तुम्हारी और मेरी, कभी उससे मिलना नहीं आप, वो आपके चिंता के लिए अच्छी नहीं है, डोंट एसोसिएट विद हर। और फिर वो मिलते हैं दूसरे के लिए। ऐसे अनेक प्रकार के छद्म लीलाएं हैं और छद्म लीला ये बरसाने की विशेषता है। ऐसे ही हमारे ठाकुर जी खड़े हो जाते रस्ते में और ऐसे देखते रहते हैं, लोग पूछेंगे अरे कहाँ कर रहे हो, बोले नहीं वो कंकड़ बीन रहा हूं, मतलब रस्ते में कंकड़ देते हैं साफ कर रहा हूं, लेकिन ध्यान कहाँ है कि राजा रानी आएगी तो मैं देखूंगा उनको, सब बाल बाल उनका उनका मजाक उड़ाते रहते हैं, देखो बावड़ा हो गया, बावड़ा पता है ना बावड़ा मतलब क्या है, बावड़ा है वो मतलब पागल हो गया आदमी, यही डोलते रहता है। तो ऐसा ये बरसाना धाम है और इस धाम में केवल वही जन्म लेते हैं जो राजा रानी के बहुत प्रिय होते हैं, जिन्होंने पिछले जन्मों में ऐसा सेवा किया है भगवान का, भगवान के भक्तों का, इतना मैं पुण्य नहीं कहूंगा उसको, पुण्य मतलब क्या है, किसी अंधे को रास्ता क्रॉस करके देना, किसी गरीबों को नोटबुक देना, किसी को खाना खिलाना, किसी को वस्त्र देना, इसको समाज सेवा और पुण्यकारी कार्य करते हैं। लेकिन जो क्या कहते हैं उसको वैष्णव सेवा होती है ना, भगवान के वैष्णव भक्तों की सेवा होती है ना, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। वो जिसने की है वो राधा रानी पर प्रेम करते हैं, उन्हीं को वहां पर जन्म मिलता है। और राधा रानी उनको कैसा रखती है, कोई सुंदरता नहीं होती उनके अंदर, कोई धन दौलत नहीं होती ज्यादा, कोई विद्या भी नहीं होती है। तो ये तीन चीजें हम लोग उस पर गर्व करते हैं ना, धन के ऊपर गर्व करते हैं, विद्या पर गर्व करते हैं, पढ़ा लिखे पर, और क्या बताया मैंने, सुंदरता, ये तीनों उनको देते नहीं वो, क्योंकि उनकी ऐसी इच्छा होती है कि मेरे जो प्राण प्रिय भक्त हैं ये ब्रजवासी, इनके कोई गर्व नहीं होना चाहिए, तो उनको सिंपल रखती हूँ। और क्या कहें आपको, मैंने ना पहले सुना था ये, लेकिन हमारे आई कैंप में एक बार देखा मैंने इसको, कि हम रात को एक बार आई कैंप में राउंड लेने गए थे, हाँ जाते हैं रात को देखने के लिए एवरीबॉडी इज ऑल राइट और नॉट, किसी को उल्टी हो रही है, कुछ हो रहा है, कष्ट हो रहा है, तो हम राउंड लेके आते हैं बीच में एक बार, सब देखे थे सो जाते हैं। हम लोग ऐसे बीच में एक बजे रात को गए थे, सब डिम लाइट था पूरा, सब पेशेंट ठंड के मौसम में कंबल ओढ़ के ऑपरेशन के बाद में सोए हुए थे, और ऐसा राधे राधे ऐसी दर्द भरी आवाज आ रही है। तो हमारा गेस वर्क क्या होगा, आंखों का ऑपरेशन किया है, आंखों में दर्द होता होगा, नींद नहीं आती होगी, पेन में चिल्लाते होंगे, तो हम लोग खास करके उस आवाज की ओर गए, तो बाद में पता चला कि दो चार लोगों की तरफ से आवाज आ रही है, ऐसा नहीं कि एक ही आवाज आ रही है। तो हम लोग वहां गए और उनका जो भी वो था ना वो रजाई, उसको ओढ़ के देखा तो एकदम गहरी नींद में ब्रजवासी सोया हुआ है पोस्ट ऑपरेटिव, और गहरी नींद में राधे 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 पुकार रहा है। हैरान हो गया देखकर, हम लोग तो सुबह के समय रात की पूरी दिन निकाल कर जब सुबह उठते हैं और जब में बैठते हैं तो तभी हम सो जाते हैं, यू नो, सपोज टू बी अवेक कॉलिंग आउट द नेम, वी गो टू स्लीप, एंड दिस पीपल व्हेन दे आर सपोज टू स्लीप दे आर चैंटिंग द नेम ऑफ राधा रानी, क्योंकि उनके हृदय के अंदर की गहराइयों में राधा रानी, केवल नहीं राधा रानी का अति उत्कट प्रेम जो है ना वो बसा हुआ है। ये बरसाने के ब्रजवासियों की महिमा है। तो दिखने में बहुत ऐसे कुरूप लगते हैं, अनपढ़ लगते हैं, गंवार लेते हैं कभी कभी, धन नहीं है कुछ उनके पास, हमेशा जरूरत पे रहते हैं, लेकिन राधा रानी उनको जानबूझ के रखती है ऐसे, क्योंकि कितना भी कष्ट उनको होता है जीवन में वो राधा रानी का नाम नहीं भूलते कभी, कितना भी कुछ है वो राधा रानी करेगी, राधा रानी देखेगी। हम लोग ऐसे डायलॉग बॉम्बे में बहुत मारते हैं, तो भगवान के हाथ में ऐसा भगवान सब देख लेते हैं, लेकिन रियली वी डोंट मीन दैट, यू नो, बट दे रियली मीन दैट, वी हैव सीन इन अवर इंटरेक्शन विद देम। और उनके अंदर इतनी क्या कहते हैं उसको, ग्रैटिट्यूड होती है, उसको क्या कहते हैं हिंदी में, हाँ, कृतज्ञता, धन्यवाद का भाव इतना होता है कि कभी 92 में ऑपरेशन किया तो आज भी आते हैं मिलने के लिए, वो छाछ लेके आते हैं, अरे प्रभु जी आपने हमारे बेटे का ऑपरेशन करके जिंदगी बना दिया उनका, क्योंकि 6 साल का बच्चा था उसका, दोनों आंख से अंधा था, अभी 92 में ऑपरेशन किया था, अभी वो 38 ईयर्स का हो गया है, उसको भी 4 बच्चे हैं, लेकिन अभी भी वो आता है पिताजी के साथ में और रोटी और मक्खन और देके जाता है। ऐसे कई लोग हैं, अभी 92 में ऑपरेशन किया, 2 बार आया, बहुत हो गया ना, अभी थैंक यू बोला अभी, लेकिन ग्रैटिट्यूड इज सो डीप दैट दे कैन नॉट फॉरगेट यू। ढूंढ ढूंढ के आते हैं, वो डॉक्टर जुगल किशोर कहाँ है, बोले अभी ऑपरेशन कर रहे हैं, तो दिन भर बैठेंगे, वो थिएटर के बाहर आएगा तो उसको सर पे ऐसे मारेंगे प्रेम से, ले लो बेटा ये लो रोटी खा लो, ये ब्रज रोटी खा लो, ये मक्खन खा लो, छाछ पी लो, कल भी ले आऊंगी आपके लिए। दिस इज रियल वेल्थ, और इस वेल्थ के वजह से, उनके हृदय की संपत्ति की वजह से राधा रानी उन पर रिझती रहती है, शी इज ऑलवेज प्लीज्ड विद देम, यू नो, एंड कीप्स देम अंडर देयर शेल्टर। और वहां के संत जो है रमेश बाबा जी महाराज, उनको उन्होंने हमको पहले ही कैंप पे बता दिया था कि इन लोगों की जो सेवा करता है और उनकी सेवा प्राप्त करने के बाद, हमारी सेवा प्राप्त करने के बाद जब वो मुस्काते हैं और समाधान से आशीर्वाद देते हैं, तो समझ लेना कि राधा रानी आप पर प्रसन्न हो गई है, और उसी दिन राधा रानी आपके नाम की सिफारिश कृष्ण को, श्याम सुंदर को करेगी कि दिस इज अ गुड डिवोटी, ही हैज सर्वड माय डिवोटी, सो प्लीज ब्लेस हिम। तो अगर हम योग्य भी नहीं होंगे उनके कृपा के, लेकिन राधा रानी के आशीर्वाद से हमें कृष्ण भी स्वीकार करेंगे। राधा रानी कैसे रहते हैं, ऐसे रहते ना, तो ये हाथ में अगर कोई आ गया तो कृष्ण तक पहुंच जाता है और हाथ में कैसे आएगा, उनके प्रिय भक्तों की सेवा करेंगे तो उनके हाथ में आ जाएगा। तो यही सीक्रेट है, हम लोग तो जाते हैं वहां पर कैंप करने के लिए, लेकिन हमारा क्या इनर मोटिवेशन क्या है कि हम राधा रानी की कृपा चाहते हैं। हमारे गुरु महाराज बताते हैं कि हम लोग वहां पर कैटरेक्ट का ऑपरेशन करते हैं। कैटरेक्ट से क्या होता है कि हमको दिखता नहीं, जो दिख रहा था वो दिखता नहीं, बंद हो जाता है, तो हम लोग कैटरेक्ट निकालते हैं और उनको दिखना आराम हो जाता है। ओवर नाइट दे कैन सी राधा रानी इन टेंपल, दे कैन रीड देयर पोथी, दे कैन डू एवरीथिंग, दे कैन गो टू टॉयलेट ऑन देयर ओन, ईट इन ऑन देयर ओन प्लेट, अदरवाइज दे ईट लाइक दिस, नाउ दे कैन सी देयर प्लेट एंड ईट। तो ये हमारी, हमको लगता है कि हमने उनको दृष्टि दिया, बहुत बड़ा दान है, दृष्टि दान। लेकिन एक्चुअली स्पीकिंग हमारे अंदर जो अविद्या का मोतिया है, अविद्या का कैटरेक्ट है, वो वहां पर निकलता है। उसकी वजह से जब उनको हम दृष्टि देते हैं तो हमारे अविद्या का कैटरेक्ट नष्ट हो जाता है। तो इट्स अ गिव एंड टेक म्यूचुअल एक्सचेंज प्रोग्राम। तो ये बहुत ही मधुर लुभावना अनुभव है। एक बार मुझे याद है बरसाने में हमारी डॉक्टरनी है, डॉक्टर साहब की पत्नी भी डॉक्टरनी है, आई सर्जन है। तो जब भी ऑपरेशन होता है तो बहुत लोगों का प्रेम होता है, वो कोई करते हैं प्रेम, हम तो बातें फिर करते हैं उनसे। तो वो अचानक आई बरसाने में ऐसे, तो वो माता जो थी ब्रजवासी, वो अपने बेटी को स्कूल लेके जा रही थी। ऐसे पहाड़ से उतरते, एक हाथ में बैग है उसके, टिफिन का बॉक्स है, बेबी को लेकर स्कूल छोड़ रही है। उतने में हमारी माता जी ऊपर जा रही है, डॉक्टर की माता जी। तो अरे आप कभी आई? बोले अभी आ रही हूँ, अभी मंदिर दर्शन करने जा रही हूँ। आप कहाँ जा रहे हो? मेरे बच्ची को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ। अरे तुम बहुत दिन बाद आई, आई नहीं हमारे घर पे, उनको रोटी खिलानी थी, तुम मक्खन खिलाना था। अच्छा काम करो, ये ले लो आप। क्या कर रही हो? अपनी बेटी का टिफिन उसको दे रही है, गरम गरम रोटी मक्खन दिया हुआ है। तो डॉक्टर ने कह रही, अरे तो बेटे के लिए है, मैं आ जाऊंगा घर पे आके। अरे पता नहीं कब आओगे तुम, मैं तो दोबारा उसको रिसेस में जाके रोटी दे सकती हूँ, लेकिन तुम कब मुझे मिलोगी? ऐसा करके जबरदस्ती उसको बेटी का टिफिन दे दिया, मतलब तुम खाओ। ये ना केवल एक ब्रजवासी माता ही कर सकती है, है ना, अपने बेटे के हिस्से का रोटी किसी को दे सकती है। और निश्चित रूप से वो जाकर बना के दोबारा स्कूल छोड़ के आएगी रोटी, फिर बात नहीं है। लेकिन इतना प्रेम भाव है ना, ओनली दोज पीपल हैव, आई कैन टेल यू दैट 100%। इसलिए इतने साल बीत गए फिर भी हम लोग वहां पर जाते रहते। क्यों? क्योंकि जितना हम समझते हैं कि हम सेवा कर रहे हैं, उससे करोड़ों गुना अधिक प्रेम वो देते हैं हमको, हर एक व्यक्ति। और हमने इतनी सार मेडिकल प्रैक्टिस किया है, भक्ति विद्यालय में यहां पर किया है, कभी हमने किसी भी व्यक्ति को ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन के पहले डांस करते हुए देखा नहीं। Have you ever seen? Most of you must have got operated. Have you ever danced before theater? Before anesthesia के पहले एक डांस कर लेता हूँ, चलो let me go to theater afterwards. वहां पर हर कैंप में हर दिन नाच होता है, उनको एनेस्थेसिया आंखों में देने के पहले, लेडीज कम टूगेदर, तभी ना वो होता है क्या, होली का मौसम होता है। इस 40 डेज होली ना, वहां पर तो 40 दिन होली चलती है। तो हमारा कैंप हमेशा होली के मौसम में होता है, और एक्चुअल होली फिर बाद में आती है, लेकिन वो होली के भाव में 4 बजे सब लोग रंग उधेड़ते हैं। तो ये सब लोग होली के गीत गाते हैं और डांस करते हैं। देखो प्रभु जी हाँ हाँ बोल रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा कैंप में आते हैं, देखते हैं वहां पर हाउ द लेडीज आर डांसिंग। तो इट्स अ सीन टू सी, यू आर गोइंग टू गेट ऑपरेटेड विद इन फ्यू मिनट्स। तो कितना टेंशन रहता है लोगों का, बीपी बढ़ जाता है, क्या क्या शुगर बढ़ जाती है, कंट्रोल करके फिर लेना पड़ता है, यू आर डांसिंग। और 92 में भी हमने जब पहला काम किया था ना, तो राधानाथ महाराज उसमें थे, उनके साथ भी ओल्ड लेडीज आर डांसिंग। मेरे पास पिक्चर्स है अभी भी उसके, ओल्ड लेडीज आर डांसिंग बिफोर ऑपरेशन, एंड देन पट्टी लगा के फोटो निकाला उनका, कि ये औरत डांस कर रही थी, पट्टी लगा के भी खड़ी है सामने। ऐसा है। और फिर वो हम उनको श्याम सुंदर का फोटो दिखाते हैं, है ना, बताओ इनका मोर पंख किधर है, हाँ यहाँ है, हाँ दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, राधा रानी भला करे, राधा रानी खूब भक्ति दे, खूब फले फूले, खूब मुझे एक औरत ने आशीर्वाद दिया था, खूब राज करो, खूब राज करो, मतलब क्या, राजा बनो, बिकम अ किंग एंड बी रूल द वर्ल्ड। मेरा वीडियो उसका बाय द वे। और वो इतना टिपिकल टोन में, यू नो, एक्सेंट में बात करते हैं ना, वो तुरंत लोगों को समझ में आता है, राज करो बेटा, राज करो, लाइक दैट। सो दे गिव द वे, दे गिव ब्लेसिंग ना, वो हमारे अंदर कैसे होता है ना, हम लेने में भी कंजूस और देने में भी कंजूस रहते हैं, दे आर लाइक यू नो बोथ वेज कंजूस, बट दे आर सो बेनेवोलेंट एंड सो हार्ट फेल्ट ब्लेसिंग आर देयर इन द हार्ट, पोरिंग एंड पोरिंग एंड पोरिंग एवरी ईयर। ऐसा ये बरसाना धाम ने क्या कहे आपको, पूरा जीवन ही बना दिया हमारा। एज आई टोल्ड यू, सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग इन बैकग्राउंड, बट द कनेक्शन विद बरसाना हैज एडेड सच ब्यूटीफुल फ्लेवर टू लाइफ, सच लव, हैप्पीनेस एंड कनेक्शन एंड रिलेशनशिप विद सो मेनी ब्रिजवासी जो वहां पर रहते हैं, उनका समर्पित जीवन हमने देखा है, कैसे कैसे संघर्ष किए उन्होंने, निस्वार्थ भाव से पहाड़ों की लड़ाई लड़े, क्योंकि माइनर्स क्या होता है ना, वो पहाड़ तोड़ के उसका जो पत्थर है ना, उसको क्रशर में डाल के उसको बेचते हैं बिल्डिंग बनाने के लिए। अभी पहाड़ दोबारा रिपेयर नहीं होते, आपकी बिल्डिंग रिपेयर हो सकती है, पहाड़ टूटेगा तो कभी सुना आपने, पहाड़ रिपेयरिंग किया आपने, पहाड़ को पहले ऐसा बना दिया, हाँ कितना भी धन डालेंगे ना तो पहाड़ रिपेयरिंग नहीं होता है। तो उसकी लड़ाई लड़े। गहवर बन ऐसी एक जगह है जिसमें राधा रानी और कृष्ण एकदम अंतरंग से अंतरंग लीला करते हैं। कैसे अंतरंग लीला करते हैं? उसमें गोपियां भी नहीं रहती, सब कुछ रेडी करके दोनों को अंदर भेज देते हैं, फिर रात भर दोनों साथ में लीला करते हैं एकदम उत्कट। उसको कहते हैं निवृत्त निकुंज लीला। एक होती है वृंदावन लीला, एक होती है कुंज लीला, एक होती है निकुंज लीला, एक होती है निवृत्त निकुंज लीला। सबसे कॉन्फिडेंशियल कुछ कुछ जगह है वृंदावन में ऐसे, वहां पर उनको दोनों को छोड़ देते हैं। उसमें से एक जगह है गहवर कुंड, और वो गहवर बन के अंदर है। और गहवर बन कहां से शुरू होता है? राधा रानी के मंदिर से चित्रासके के गांव के एंड तक जो जगह है, दो गांव आते हैं उसके अंदर, बरसाने का टाउनशिप और चिकसोली का गांव, पूरा जो एरिया है उसको गहवर बन कहते हैं। और वो गहवर बन में राधा रानी ने हरेक बेली, हरेक पेड़, हरेक वृक्ष अपने हाथ से लगाया है और उसका सिंचन किया है, अपने बालकों की तरह उनको परवरिश दिया है। बचपन में कृष्ण और राधा रानी, कृष्ण बड़े वृक्ष के पक्ष में, राधा रानी बेलियों के पक्ष में, यू नो राधा रानी इन द साइड ऑफ द क्रीपर्स, कृष्ण ऑन साइड ऑफ द बिग ट्रीज, दे वुड मैरी देम टुगेदर, मैरी क्रीपर्स विद द ट्रीज। वी कांट इवन इमेजिन दिस थिंग्स। फिर एक गांव है वहां पर आगे, इसका नाम है डबहारा, वहां पर गुड्डा गुड्डी का खेल होता है। यहाँ से गुड्डा को लेकर राधा रानी आती है, वहां पर गुड्डी को लेकर कृष्ण आते हैं, तो दोनों का विवाह होता है डबहारा गांव में। तो ये जो गहवर बन का अंतरंग स्थान है उसमें बहुत सुंदर सुंदर गीत भी है उसके लीलाओं के। तो वो टूटता जा रहा था, काटे काटा जा रहा था, लोग सब वहां जमीन बेचकर कुछ बनाना चाहते थे। तो उन्होंने 46 ईयर तक लड़ाई लड़ी और आखिर में वो सारा स्थान जो है वन विभाग में संरक्षित कर दिया। इसलिए आज हमको जाके गहवर बन क्या होता है उसका थोड़ा सा आइडिया आ जाता है। उसमें ऐसा सीन है, मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ आपको, समय कितना बताना मुझे एंड करने के लिए, तो मैं फिर ऐसा ही रात तक चलते रहेगा। इसलिए तो वहां पर सीन ऐसा है कि जो भी कुछ चीजें ना वहां पर, वो ऐसे कमान की तरह है, एवरीथिंग इज आर्च्ड, यू गो इन द इनसाइड आर्च, और वो आर्च में क्या होता है ऐसे वेलियां ऐसे बहती रहती है कलरफुल, गुलाबी, ब्लू, व्हाइट, येलो, ऑल काइंड ऑफ ब्यूटिफुली फ्लावर्ड, जितने भी वेलियां है ना ऐसे वो जमीन पे ऐसे फ्लो होती रहती है। और कृष्ण भगवान क्या करते हैं, राधा रानी को श्रृंगार किए हुए ऐसे लेके जाते हैं एक हाथ से पकड़कर, और एक हाथ से वो वेलियों को सवारते हैं और रास्ता बनाकर उनको अंदर ले जाते हैं। तो ऐसे 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 अंदर जाते हैं, फिर अंदर पुष्प शैया बनी हुई है, गुलाब के सुगंधित पंखुड़ियों से शेज बनाई हुई है, और वहां पर लीला लीला करते हैं, वहां पर कोयल कुहू करती है। और कृष्ण भगवान बता रहे हैं आइए राधा रानी आइए, ये देखिए गहवर बन है, यहाँ पर तोता बोल रहे हैं, कोयल बोल रही है, सब आपका स्वागत कर रहे हैं, सब आपके प्रेम से यहाँ पर रेडी है आपकी सेवा करने के लिए, आइए प्लीज एंटर प्यारी जू, आगे चल गहवर बन भीतर जहां कोयल बोली रही। ऐसा सुंदर अंतरंग स्थान है वहां पर, ऐसे ना वो गहवर कुंड के आसपास बहुत ऐसे रास मंडल है, प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल, नोबडी गोज देयर आल्सो, नोबडी नोज आल्सो, वो सीढ़ी के नीचे है सब, वो वहां पर राधा रानी और कृष्ण भगवान रास करते हैं अकेले, ऐसे अंतरंग स्थान सब उसके आसपास में है गहवर कुंड के। और वहीं पर हमारा सबका सबसे पहले इंट्रैक्शन हुआ था उन सघन वृक्षावलियों के बीच में। आज भी वहां पर सबसे बड़े बरगद के पेड़, सबसे बड़े पीपल के पेड़, नीम के पेड़, कदम के पेड़, तमाल के पेड़, सब अभी भी वहां पर सब विराजमान है। और उन्हीं के नीचे बैठकर वो अद्भुत कीर्तन हमने सुना था संध्या के समय, भजले राधे जय श्री राधे, करुणा प्रेम दया मई राधे, तो कृपा मई राधे, दया मई राधे, दया मई राधे, भजले राधे जय श्री राधे। ऐसे जब कोई संगीतज्ञ ये गीत गाता है ना तो हमारा दिमाग इंप्रेस होता है, लेकिन भक्त जब ये गीत गाता है तो हमारा हृदय छिन्न विच्छिन्न हो जाता है प्रेम से। तो वैसे हमारा कुछ अधिक अनुभव वहां पर हुआ था, और ये सबसे बड़ी कृपा है संतों का परिचय होना और संतों के माध्यम से ब्रज का दर्शन करना, ये जीवन की सबसे बड़ी प्राप्ति है। बाकी जीवन में जो भी कुछ हम प्राप्त करते हैं सब कुछ यहाँ पर छोड़ के जाना पड़ता है। संतों के द्वारा दिया हुआ और प्राप्त हुआ जो अनुभूति है वो हमारे साथ जाता है, वो हमें रिच बनाता है, संपन्न बनाता है, धन संपन्न बनाता है, दिव्य संपत्ति से संपन्न बनाता है, और वो हमें उसके साथ हमें हम उसके साथ जा सकते हैं, उसको लेके जा सकते हैं, बाकी सारा धन तो यहीं पर छोड़ के जाते हैं। तो ऐसा धन है ना, वो गुरु महाराज की कृपा से बहुत असीम मात्रा में प्राप्त हुआ है उनकी कृपा से। और हमारी ऐसी इच्छा है कि ये जो सेवा गुरु जी के माध्यम से मिली थी, क्योंकि ना 1971 में हमारे गुरु जी दिसंबर में पहली बार बरसाना गए थे घनश्याम बाबा के निर्देश से, कि घनश्याम बाबा वृंदावन में थे, उन्होंने कहा यू गो टू बरसाना, वहां पर रमेश बाबा है मान मंदिर में, उनसे मिलना। तो पैदल चले गए थे, श्री जी का दर्शन किया था, फिर वो रास्ते में गए थे, फिर मान मंदिर गए थे, फिर वहां पर 6 महीने रहे वो, और उन्होंने वहां पर माधुरी की है, भिक्षा की है, जल उठाकर ऊपर ले गए, नीचे किया, बाबा जी का संग किया 6 महीने, उनको अपने जीवन की सबसे जो महत्वपूर्ण अनुभूतियां थी, साक्षात्कार, रियलाइजेशन भक्ति के विषय में, वो उन दिनों में वहां प्राप्त हुई थी। जो व्यक्ति ढूंढ रहा है, इतना तपस्या करके, हिच हाइकिंग करके विदेश से भारत और भारत में पैदल घूम रहा है, और उसको आखिर में मिल जाता है जो वो खोज रहा है, हाँ यू कैन इमेजिन। मुझे वहां के ब्रजवासी आज भी बताते हैं कि जब वो तभी आए थे ना, तभी आज के जो 65-70 ईयर के लोग हैं ना, तभी वो सब 19-20 के थे, और ये भी 19-20 के थे, है ना। तो वो बताते हैं मुझे कि जब वो आए थे ना, तब उनकी आंखों में खोज थी, इज आईज वर लाइक सर्चिंग समथिंग, और अभी जब आते ना तो उनकी आंखों में ऐसा भाव है कि जो खोज रहे थे वो मिल गया। और वो तभी हुआ था जब यहां से गए थे वो, तो तब जब महाराज जी वहां से 6 महीने के बाद गए थे, तो मन में निश्चय करके गए थे कि इस जगह के लिए मैं कुछ अच्छी, क्या कहते हैं उसको, सराहनीय, हाँ, रिकॉग्नाइजेबल, रिमार्केबल सेवा करना चाहता हूं। तो कुछ हुआ नहीं, 71 में गए, तो हम लोग 86 में हम लोग पहली बार गए, उनका इंट्रैक्शन हुआ, फिर 89 में हम लोग झूलन यात्रा में गए थे। हाँ, मैंने ना वृंदप्रिया माता जी का रिकॉर्ड लेके गया था दोस्तों, बोरो करके, और जो भजन में रिकॉर्ड किए ना उसी में रिकॉर्ड किए और उसको ट्रांसलेट किए डिजिटाइज में। तो 89 में जब हमने ये बात छेड़ी की, उन्होंने कहा कि आप मम्मी क्या करते हो, हाई कैंप करते हैं, थोड़ा सा 25 ऑपरेशन करते हैं, कभी गाँव में कैंप करते हैं, मैं यहाँ करूँ ना, यहाँ पर कितने बंदे होते हैं। तो महाराज को देखा, यस यस, घूमने गए थे और वहां पर कैंप तय हुआ, और तुरंत 2 महीने में आकर उन्होंने हमने वहां पर कैंप लगाना शुरू किया। तो वो उनकी भावना थी कि आई वॉन्ट टू रिपे माई स्पिरिचुअल डेट बाय डूइंग सम टेंजिबल सर्विस, और इसके लिए हमें सेवा मिली, उनका जो भाव था इसलिए हमें सेवा मिली, वी गॉट एंगेज, वी गॉट benefited, or not only us, we were only 68 in the first camp, अभी 400 लोग जाते हैं उधर देश विदेश से, लोग तो ऐसे छोटे से ग्रुप में गए थे पहली बार, उनके घर में रुके थे, उनके घर में टाट के घर बनाए थे, टाट का बाथरूम बनाया था, टाट का टॉयलेट बनाया था, टाट का सब ठंड मौसम में हम लोग रहे वहां पर, उसके व्हाट कॉल्ड गनी सैक रूम्स वी हैड मेड, एंड देयर वी स्टेड फॉर 22 डेज इन द मिडल ऑफ द हेवी कोल्ड। ये सब संतों की कृपा से होता है, संत कृपा करते हैं, फिर महान आत्माओं से हमारी मुलाकात होती है, उनका संपर्क होता है, उनकी सेवा मिलती है, उनका आशीर्वाद मिलता है, उनका प्रेम मिलता है, ये सब के लिए हम संतों के बहुत ऋणी हैं, गुरु महाराज के बहुत ऋणी हैं। और हमारी ऐसी इच्छा है कि अभी इफ यू आस्क मी, विशाखा माता जी ऑल्सो इज हियर, 29 इयर्स वी हैव डन सेवा देना, एंड यू टू शार्ट बी शार्ट इट,
आई कैन,
हाँ, पहले घूमने जाते थे, कहते सिर्फ पहली बार गए थे, 89 में गए, और उसके बाद 92 में फिर हमने कैंप के लिए गए, उसके बाद में हम लोग हर साल कैंप में जाते हैं, कैंप लगाते हैं, फिर यात्रा करवाते हैं लोगों को। तो 29 साल तो हमने किए, तो आई एम प्रीटी वेल सेटिस्फाइड। बट कैसा है ना कि अगर हमने सेवा की है तो हमारे बच्चे, हमारे बच्चों के बच्चे, हमारे बच्चों के बच्चों के बच्चे, उनके 4 generations 5 generations शुड बी एबल टू हैव अ प्लेटफॉर्म वे दे कैन सर्व। हमारे लिए प्लेटफॉर्म नहीं था, हमने बनाया उसको, और हम जब जाएंगे तो शायद नहीं रहेंगे कल, तो हमारे बच्चे, उनके बच्चे वहां पर सेवा कर सकते हैं, और जो आनंद और जो लाभ, आध्यात्मिक लाभ हमने प्राप्त किया, वो सभी लोगों को प्राप्त हो सकता है, देश विदेश के लोगों को प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए गुरु महाराज ने भी तुरंत अनुमति दिया कि यस यू मेक, तो वी आर मेकिंग हॉस्पिटल देयर, ताकि हमारे आखिरी सांस तक हम वहां पर सेवा करेंगे और देखेंगे कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन, सेकंड थर्ड जनरेशन आर सर्विंग देयर, दैट विल गिव अस लॉट ऑफ प्लेजर, एंड ब्रजवासी विल ब्लेस अस अनलिमिटेडली।
fill our hearts, fill our lives, and they will pave our way back to Godhead. वही हमको भगवान के धाम तक पहुंचाएंगे अपनी कृपा से. आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने हमको यहाँ पर बोलने का मौका दिया. Anybody has any question regarding Barsana Dham? Any question? हाँ, देखो एक बात बताना भूल गया मैं कि वृंदावन धाम में और बरसाना धाम में देवताओं को भी प्रवेश नहीं है, पता है आपको? नो एंट्री फॉर देवता. अगर कभी आते हैं ना देवता, तो उनको ब्रज के बाहर अपना वाहन पार करना पड़ता है, चप्पल वहां निकालना पड़ता है, तो सारा जो होता है ना वो डामाडोल, क्या कहते हैं उसको, ऐश्वर्य, तो छोड़कर वहां पर आना पड़ता है. और नाइट स्टे अलाउड नहीं है देवताओं को. आप लोग रह सकते हो रूम लेकर वहां पर यात्रा के लिए, लेकिन देवताओं को वहां पर नाइट स्टे अलाउड नहीं है. दिन में आना है, मिलना है, मीटिंग करके वापस जाना है. और देवताओं को भी वहां का राधा रानी का और कृष्ण का महाप्रसाद प्राप्त नहीं होता है. ब्रह्मा जी को भी प्राप्त नहीं होता है. कई बार ब्रह्मा जी आए हैं महाप्रसाद लेने के लिए, मछली बनकर आए थे, जमुना जी के अंदर के हाथ धोएंगे तो उनका हाथ का झूठन पानी में गिरेगा तो वो खा लेंगे हम, लेकिन भगवान ने उनको देखकर पानी लेकर जमीन पे हाथ धोया. ऐसी जगह है ये, बहुत बहुत जन्मों के पुण्य के बाद में एक यात्री के रूप में आप जा सकते हो. जन्म लेने के बाद छोड़ ही दीजिए, जन्म लेने का तो बहुत ज्यादा बड़ी महान चीज है. फिर कुछ लोग वहां पर जाके सेटल हो जाते हैं, सेकंड महान चीज है. फिर हम जैसे लोग वहां पर जाके यात्रा करते हैं, जाके आते हैं 15 दिन 10 दिन में आ जाते हैं. तो ये बहुत विशेष जगह है, बाकी धामों की तरह नहीं है. क्योंकि यहाँ पर ना भगवान भी अपने आप को पूरा ऐश्वर्य पद शक्ति जो भी है उनके वो सब छोड़ के वहां जाते हैं. गोज एज ऑर्डिनरी बॉय देयर, ही डजंट गो देयर एज लॉर्ड सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड. इस भाव से वो जाते नहीं थे वहां पर, वो केवल एक यकश्चित सामान्य ग्वालवाल बेटा मित्र या पुत्र बनकर जाते. और वो चाहते भी नहीं कि उनको पहचाने कि मैं कौन हूं. तो उनको वहां चोरी करना है, उनको वहां माखन चोरी करके खाना है, उनको वहां पर रात को छुप छुप के डांस करना है, उनको ऐसे बहुत चीजें करनी जो राजा के रूप में नहीं कर सकते. वो बोले क्या राजा है कि क्या ही. सो यू वांट टू गो टू अ प्लेस वेयर ही हैज हिज ओन स्पेस. He can do whatever he wants to do. अभी चोरी करके खाना कितनी difficult बात है ना. अभी जो universes निर्माण के जो creator हैं, उनका अगर आपके घर में आके माखन चोरी कर खाना तो कितना मुश्किल है उनके लिए. लेकिन वो ब्रज में उसके लिए आते हैं. वैकुंठ का सारा लक्ष्मी का ऐश्वर्य छोड़कर ब्रज में गोपियों का मक्खन चोरी करके खाने के लिए आते हो. Yes, only for that purpose. अपने घर पे खाकर भी वहां जाके चोरी करके खाते हैं. उनका ही भाव है. तो वो ब्रज से ब्रज बहुत स्पेशल है. हम लोगों का परिचय हुआ है तो हम लोग का कोई ग्रेटनेस नहीं है, ये तो अनन्य कृपा है. अनन्य कृपा मतलब जो तो कॉज बिहाइंड इट, कॉजलेस वर्सी कहते हैं उसको. तो हम सब लोग उस कॉजलेस वर्सी के हकदार हैं, भागीदार हैं. हमको दिया गया है, जस्ट टेक इट, दैट्स ऑल. सो लेट्स टेक इट. Thank you very much. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
तभी मेरी बेटी